श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 64 राजा नृग का उद्धार। श्री बादरायणी ने कहा, हे राजा, एक दिन सांप प्रद्युम्न चारु भानु गद तथा यदुवंश के अन्य बालक खेलने के लिए एक छोटे से जंगल में गए। देर तक खेलते रहने के बाद उन्हें प्यास लगी। जब वे पानी की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने एक सूखे कुएं के भीतर झांका और उन्हें एक विचित्र सा जीव दिखा। लड़के इस जीव को, जो कि छिपकली थी और पर्वत जैसी दिख रही थी, देखकर विस्मित हो गए। उन्हें उसके प्रति दया आ गई और वे उसे कुएं से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। उन्होंने वहां फंसी उस छिपकली को चमड़े की पट्टियों तथा सूत की रस्सियों से पकड़ा, किंतु फिर भी वे उसे बाहर नहीं निकाल सके। अतः वे कृष्ण के पास गए और उत्तेजित होकर उनसे उस जीव के विषय में बतलाया। ब्रह्मांड के पालन करता कमल नेत्र भगवान उस कुएं के पास गए और वहां वह छिपकली देखी। तत्पश्चात उन्होंने अपने बाएं हाथ से उसे आसानी से बाहर निकाल लिया। यशस्वी भगवान के हाथों का स्पर्श पाते ही उस जीव ने तुरंत अपना छिपकली का रूप त्याग दिया और स्वर्ग के वासी का रूप धारण कर लिया। उसका रंग पिघले सोने जैसा सुंदर था और वह अद्भुत गहनों, वस्त्रों तथा मालाओं से अलंकृत था। भगवान कृष्ण परिस्थिति को समझ गए, किंतु सामान्य जनों को सूचित करने के लिए उन्होंने पूछा, हे महाभाग, आप कौन हैं? आपके उत्तम स्वरूप को देखकर मैं सोच रहा हूं कि आप अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हैं। आप किस विगत कर्म से इस दशा को प्राप्त हुए? हे महात्मन, ऐसा लगता है कि आप ऐसे भाग्य के योग्य नहीं थे। हम आपके विषय में जानना चाहते हैं, अतः यदि आप हमें बताने का यह समय तथा स्थान उचित समझते हो तो कृपा करके अपने विषय में बतलाइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अनंत रूप कृष्ण द्वारा पूछे जाने पर सूर्य के समान चमचमाते मुकुट वाले राजा ने माधव को प्रणाम किया और वह इस प्रकार बोला। राजा नृग ने कहा, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग नामक राजा हूँ। हे प्रभु, शायद आपने मेरे विषय में तब सुना होगा जब दानी पुरुषों की सूची भांति जा रही होगी। हे स्वामी, आपसे अज्ञात है ही क्या? आपकी दृष्टि काल द्वारा अविचलित है और आप सारे जीवों के मनों के साक्षी हैं, तो भी आपकी आज्ञा पाकर मैं कहूंगा। मैंने धान में उतनी ही गौवें दी जितने की पृथ्वी पर भालू के कण हैं, आकाश में तारे हैं या वर्षा की बूंदें होती हैं। मैंने धान में जो बछड़ों सहित गौवें दी वे जवान, बूरी, दूध देने वाली थी और अच्छे आचरण और सुंदर तथा अच्छे गुणों से संपन्न थी, जिन्हें ईमानदारी से अर्जित किया गया था तथा जिनके सींग सोने से फुर चांदी से मढ़े थे और जो सुंदर सजावटी वस्त्रों एवं मालाओं से अलंकृत थी। सर्वप्रथम मैंने दान प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों को उत्तम आभूषणों से अलंकृत करके सम्मानित किया। वे अतीव सम्मानित ब्राह्मण जिनके परिवार कष्ट में थे, युवक थे तथा उत्तम चरित्र और भौतिक गुणों से युक्त थे, वे सत्यनिष्ठ तपस्या के लिए विख्यात, वैदिक शास्त्रों में पारंगत तथा आचरण में साधुवत थे। मैंने उन्हें गांवें, भूमि, सोना, मकान, घोड़े, हाथी तथा धाती समेत विवाह के योग्य कुमारियां, तिल, चांदी, सुंदर शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सज्जा सामग्री तथा रथ दान में दिए। इसके अतिरिक्त मैंने वैदिक यज्ञ किए और अनेक पवित्र कल्याण कार्य संपन्न किए। एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गाय भटक गई और मेरे झुंड में आ मिली। इससे अनजान होने के कारण मैंने वह गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। जब गाय के पहले मालिक ने उसे ले जाते हुए देखा तो उसने कहा, यह मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने, जिसने उसे दान के रूप में स्वीकार किया था, उत्तर दिया, नहीं, यह तो मेरी है, इसे नृग ने मुझे दिया था। दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए और उनमें से हर एक अपने प्रयोजन की पुरजोर कोशिश करता हुआ मेरे पास आए। उनमें से एक ने कहा, आपने यह गाय मुझे दी, तथा दूसरे ने कहा, किंतु तुमने उसे मुझसे चुराया था। यह सुनकर मैं भ्रमित हो गया। इस स्थिति में अपने को कर्तव्य के घोर संकट में पाकर मैंने दोनों ब्राह्मणों से अनुनय विनय की। मैं इस गाय के बदले 100,000 उत्तम गोवे दूंगा, कृपा करके उसे मुझे वापस कर दीजिए। आप अपने इस दास मुझ पर कृपालु हूं। मैं जो कर रहा था उससे अनजान था। मुझे इस कठिन स्थिति से बचा ले, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मलिन नरक में गिरूंगा। गाय के इस मालिक ने कहा, हे राजन, मैं इस गाय के बदले में कुछ भी नहीं चाहता, और वह चला गया। दूसरे ब्राह्मण ने घोषित किया, मैं 10,000 अधिक गोवे भी जितना तुम दे रहे हो उससे अधिक नहीं चाहता, और वह भी चला गया। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, इस तरह उत्पन्न परिस्थिति से लाभ उठाकर यमराज के दूत बाद में मुझे यमराज के धाम ले गए। वहां स्वयं यमराज ने मुझसे पूछा। यमराज ने कहा, हे राजा, सर्वप्रथम आप अपने पापों के फलों का अनुभव करना चाहते हैं या अपने पुण्य का? निसंदेह मुझे न तो आपके द्वारा संपन्न कर्तव्य पूर्ण दान का अंत दिखता है, न ही उस दान के परिणाम स्वरूप तेज पूर्ण स्वर्ग लोक में आपके भोगों का। मैंने कहा, हे प्रभु, पहले मुझे अपने पापों का फल भोगने दे। और यमराज बोले, तो नीचे गिरो। मैं तुरंत नीचे गिरा और हे स्वामी, गिरते समय मैंने देखा कि मैं छिपकली बन गया हूं। हे केशव, मैं आपके दास रूप में ब्राह्मणों का भक्त था और उनके प्रति उदार था, और मैं सदैव आपके दर्शन के लिए लालायित रहता था। इसीलिए आज तक मैं अपने विगत जीवन को नहीं भूल पाया। हे विभु, मैं आपको अपने समक्ष कैसे देख पा रहा हूं? आप तो परमात्मा हैं, जिस पर बड़े से बड़े योगेश्वर केवल वेद रूपी दिव्य आंख के द्वारा अपने शुद्ध हृदयों के भीतर ध्यान लगा सकते हैं। तो हे दिव्य प्रभु, आप किस तरह मुझे प्रत्यक्ष दिख रहे हैं? क्योंकि मेरी बुद्धि भौतिक जीवन के कठिन कष्टों से अंधी हो चुकी है, जिसने इस जगत के भव बंधनों को समाप्त कर दिया है वही आपको देख सकता है। हे देव देव, जगन्नाथ, गोविंद, पुरुषोत्तम, नारायण, ऋषिकेश, पुण्यश्लोक, अच्युत, अव्यय, हे कृष्ण, कृपा करके मुझे अब देवलोक के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दें। हे प्रभु, मैं जहां भी रहूं मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करे। हे वसुदेव पुत्र कृष्ण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। आप समस्त जीवों के उद्गम हैं, परम सत्य हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं और समस्त आध्यात्मिक प्रवर्गों के स्वामी हैं। इस तरह कहकर महाराज नृग ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और उनके चरणों पर अपना मुकुट छुआया। तब विदाई की अनुमति पाकर वहां पर उपस्थित लोगों के देखते देखते राजा नृग एक अद्भुत स्वर्गिक विमान पर चढ़ गया। तब देवकी पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हैं और जो साक्षात धर्म के सार हैं, अपने निजी संगियों से बोले और इस प्रकार राजसी वर्ग को शिक्षा दी। भगवान कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण की संपत्ति कितनी अपाच्य होती है, भले ही उसका रंच भर हो और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी द्वारा उपभोग क्यों न किया जाए, तो फिर उन राजाओं के विषय में क्या कहा जाए जो अपने को स्वामी मानकर उसका भोग करना चाहते हैं। मैं हालाहल को असली विष नहीं मानता, क्योंकि इसका भी निराकरण हो जाता है, किंतु ब्राह्मण की संपत्ति चुराए जाने को असली विष कहा जा सकता है, क्योंकि इस संसार में इसका कोई उपचार नहीं है। विष केवल उसी को मारता है जो उसे निगलता है, और सामान्य अग्नि को पानी से बुझाया जा सकता है, किंतु ब्राह्मण की संपत्ति रूपी अरणि से उत्पन्न अग्नि चोर के समस्त परिवार को समूल नष्ट कर देती है। यदि कोई व्यक्ति बिना उचित अनुमति के ब्राह्मण की संपत्ति का भोग करता है, तो वह संपत्ति उस व्यक्ति की 3 पीढ़ियों तक को नष्ट कर देती है। किंतु यदि वह इसे बलपूर्वक या राजकीय अथवा किसी बाहरी सहायता से छीन लेता है, तो उसके पूर्वजों की 10 पीढ़ियां तथा उसके उत्तराधिकारियों की 10 पीढ़ियां भी नष्ट हो जाती हैं। राजसी ऐश्वर्य से मदांत राजा अपना पतन पहले से देख पाने में असमर्थ रहते हैं। वे ब्राह्मण की संपत्ति के लिए मूर्खता पूर्वक लालायित रहकर वास्तव में नरक जाने के लिए लालायित रहते हैं। जिनके ऊपर आश्रित परिवार हो तथा जिनकी संपत्ति हड़प ली गई हो, ऐसे उदार चेता ब्राह्मणों के आंसुओं से धूल के जितने कणों का स्पर्श होता है, उतने वर्षों तक वे अनियंत्रित राजा, जो ब्राह्मण की संपत्ति को हड़प लेते हैं, अपने राज परिवारों के साथ कुंभी पाक नामक नरक में भुने जाते हैं। चाहे अपना दिया दान हो या किसी अन्य का, जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुराता है, वह 60,000 वर्षों तक मल में कीट के रूप में जन्म लेगा। मैं ब्राह्मणों की संपत्ति की कामना नहीं करता, जो इसका लोभ करते हैं उनकी आयु क्षीण होती है और वे पराजित होते हैं। वे अपने राज्य खो देते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले सर्प बनते हैं। हे मेरे अनुयायियों, तुम कभी भी विद्वान ब्राह्मण के साथ कठोर व्यवहार न करो, भले ही उसने पाप क्यों न किए हों। यदि वह तुम्हारे शरीर पर वार भी करे या बारंबार तुम्हें शाप दे, तो भी उसे नमस्कार करते रहो। जिस तरह मैं सदैव ध्यान रखते हुए ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ, उसी तरह तुम सबों को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करो। जो कोई भी अन्यथा कर्म करता है, उसे मैं दंड देता हूँ। जब किसी ब्राह्मण की संपत्ति अनजाने में भी चुराई जाती है, तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पतित होना पड़ता है, जिस तरह ब्राह्मण की गाय से मृग को पतित होना पड़ा। इस तरह से द्वारका निवासियों को उपदेश देने के बाद समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान मुकुंद अपने महल में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत राजा नृग का उद्धार नामक 64वें अध्याय के श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।